जायते प्रियते वामदाचि नायं भूत्वा भूता वाम अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसका तात्पर्य वैदिक संस्कृति की विधि और आध्यात्मिक ज्ञान की विधि है। बहुत से धार्मिक लोग जो इसी बात को नहीं मानते, इसके बारे में कुछ धारणा नहीं, बोलते कि आत्मा या सोल या रूह का फायदा होते हैं शरीर के साथ। तो इस भूल धारणा कैसे होते हैं? होती है देहात्मबुद्धि से। देहात्मबुद्धि का मतलब ये देह शरीर नहीं है और शास्त्र का मंतव्य है कि ये देहात्मबुद्धि भवबंधन का कारण है। ये शरीर नहीं है क्योंकि हम इस भूधारणा से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि शरीर नहीं है, इसलिए हमारे सभी प्रकार की अन्य आसक्तियां होती हैं। भगवान ऋषभदेव का वचन है, पुंसस्य मिथुनि भावैजं तयोरहो विद्यग्रन्थिनां अथो गृह क्षेत्र सुतात विताय जनस्य मोहोऽयं अहं न वेति। मोह मोह कैसे होते? मोह का मतलब असत को सत जैसे मानो और सत को असत जैसे, मतलब पूरी विपरीत बुद्धि होती है, विपरीत विवेचना होती है। तो मूल भूल धारणा यही देहात्मबुद्धि ईश्वर में, और इसलिए मोहित जीव सोचते हैं कि मेरा स्वार्थ है, मेरा कल्याण है इस शरीर का इंद्रिय सुख के द्वारा, क्योंकि हमारा कुछ भी पता नहीं है कि सुख भौतिक इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए हम माया कृष्ण की बहिरंग शक्ति से मोहित होते हैं और हम सोचते हैं कि इस शरीर का इंद्रियों का तर्पण करना ही सुख है और सभी प्रकार का इंद्रिय तर्पण सबसे महान है या सबसे तीव्र है वो स्त्री पुरुष आकर्षण। इसलिए ऋषभदेव ऐसे बोलते हैं कि उस स्त्री पुरुष आकर्षण से इस पूरा मोहित जगत मोहित रहते हैं और वो पहले निश्चय हूँ। और इस स्त्री पुरुष आकर्षण से और सभी प्रकार की भूधारणा भौतिक आसक्तियाँ का विस्तार होता है। तो एक पुरुष सोचते हैं कि यही स्त्री यही नारी मेरी स्त्री, और एक स्त्री सोचते हैं कि यही पुरुष मेरा स्वामी है। लेकिन वास्तव में वो स्त्री तो स्त्री नहीं है और पुरुष पुरुष नहीं है। शरीर पुरुष का रूप होते हैं या स्त्री का रूप होते हैं, लेकिन शरीर अनित्य है और आत्मा स्थायी है सनातन है। तो इस प्रकार भौतिक नारीत्व या पुरुषत्व तो सब माया है, माया का प्रकाश है। लेकिन इस मोड़ा का प्रभाव के अनुसार हम सबसे नई ईश्वर हूँ, यही नारी मेरी पत्नी है या यही पुरुष मेरे स्वामी है, और ये मकान हमारे हैं और ये बच्चे हमारे हैं और ये लोग हमारे स्वजन और ये सब संपत्ति मेरी है और ये देश मेरे है। तो ऐसे माया का विस्तार होते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन का मूल या पहला सोपान यही समझ कि हम शरीर नहीं हैं, हम सनातन आत्मा है। शरीर का विनाश होगा लेकिन आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश कभी भी नहीं होता। तो जब तक हम इसी ज्ञान को प्राप्त नहीं होते तब तक सब कुछ जो हम करते हैं धर्म का नाम है, तो वो इस भूधारणा युक्त होने से तो कभी भी पूर्ण धर्म नहीं हो सकते। भगवान या गॉड अनेक नाम है, अलग अलग भाषा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में ये भगवत भक्ति मार्ग में तीन विभाजन है। एक है प्रथम है संबंध ज्ञान, द्वितीय अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। तो पहला है संबंध ज्ञान, क्या संबंध है भगवान और व्यक्ति। तो पहले समझना चाहिए कि व्यक्ति कौन है। व्यक्ति शरीर नहीं है, व्यक्ति है आत्मा जिसका प्रभाव से शरीर जीवित जैसे देखते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है। शरीर क्या है और केवल रसायन का विकार है। इस शरीर में क्या है? साइंटिस्ट डॉक्टर बोलिए, शरीर में 90% के ज़्यादा वाटर है क्या? ज़्यादा H2O कितना? 78%। ऐसे अगर मैं अभी 2 लीटर जल पीऊँगा तो दूसरा % हो जाएगा। तो ऐसे ज़्यादा जल है, ज़्यादा कार्बन है, कार्बन मतलब कोयला जैसे, और क्या नाइट्रोजन बहुत है, ऑक्सीजन, कैल्शियम, बोन्स, तो ये सब रसायन का भी कारण। लेकिन शरीर जीवित होते जीव से, आत्मा का दूसरा नाम है जीव। जीव का मतलब सचेतन, सक्रिय, और शरीर सचेतन सक्रिय होते हैं जब तक जीव उसके साथ संयुक्त होते हैं। और जब भी जीव शरीर को चलते हैं तब से अजीवित होते हैं, मार जाते हैं, चलेगा वो, चलेगा वो कुछ। अगर हम 10 साल के बाद एक दोस्त की मकान जाते हैं, देखते हैं वो बाप नहीं है, तो हम पूछते हैं आपका बाप कहाँ? वो चलेगा, उसका मतलब मार गया। लेकिन वो मरण शब्द हम नहीं बोलते, लोग सोचते ये अमंगल है, मरण के बारे में मत बोलो। तो नहीं बोलते भी तो मरण होगा, तो अमंगल है मरण के बारे में नहीं बोलो। अगर हम इस प्रकार से भगवत गीता ज्ञान लेके मरण के बारे में बात करेंगे, फिर संभावना होगा कि हम पुनर्जन्म से मुक्त हो सके। तो वही मंगल है, अमंगल है मार जाना, तो अमंगल नहीं है। अज्ञान में मार जाना वो भी अमंगल है, क्योंकि अज्ञान में मार जाना का फल होते हैं पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म का फल क्या होता है? पुनर्मृत्यु, और पुनर्मृत्यु का फल क्या होता है? पुनर्जन्म। पुनर्मृत्यु का है श्लोक पुनर्मृत्यु जाना है, पुनरापि मरणं पुनरापि जननि जन्मरेषायां। जब तक हम इसी प्रकार की चर्चा नहीं करते, तो इसलिए इस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए कि मैं सनातन हूँ, मैं सच्चिदानंदमय हूँ, मेरा संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद है, और मैं सामान्य सच्चिदानंदमय जीव हूँ, भगवान श्री कृष्ण का अंश है और सेवा हूँ। तो यही समझना चाहिए कि शरीर का नारायण होते हैं, लेकिन आत्मा सनातन है, और इसलिए शरीर यात्रा अर्थात जीवन का समय, जब तक इस शरीर चलते रहते हैं तो तब तक ऐसा प्रयास करना चाहिए संबंध ज्ञान प्राप्त करने से, जिससे पुनर्जन्म नहीं हो। तो इससे संबंध ज्ञान अभिनय और प्रयोजन ये भगवत तत्व विज्ञान के तीन विभाग के बारे में अच्छी तरह मालूम हो जाए। तो संबंध ज्ञान यही सब समझ कि शरीर क्या है, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है और क्या अंतर है। तो यदि हम इसी ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझते तो संभावना है हम आत्मा के बारे में इतनी बड़ी भूल धारणा करेंगे कि हम सोचेंगे कि शरीर ही आत्मा है और इसलिए ऐसे तो बहुत धार्मिक लोग मतलब एक दुनिया का एक प्रसिद्ध धारणा है जिसमें वो सब लोग सोच रहे कि शरीर के साथ आत्मा का फायदा होता है और आत्मा ही शरीर है और शरीर मां जानते हैं और एक दिन आएगा विचार का दिवस जिसमें भगवान या गॉड आएंगे और सबका विचार करेंगे और वो शरीर जो मार गया है वो पुनर्जीवित होगा क्योंकि शरीर ही आत्मा है। यही धारणा तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति के लिए नहीं है लेकिन क्या है माया का प्रभाव ऐसे है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति प्रोफेसर साइंटिस्ट डॉक्टर इत्यादि मतलब भौतिक क्षेत्र में बुद्धिमान होने के भी आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ा गौर कर ऐसा है कि बैंगलोर में बहुत बहुत नहीं कहीं क्या बोलते हैं इंडियन स्पेस साका का अंतरिक्ष का अनुसंधान है उनकी बात है स्पेस रिसर्च हमारे बात में भी है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे है बैंगलोर में भी मतलब जो बुद्धिशाली लोग हैं सब एस्ट्रोफिजिक्स पीएचडी ऐसे है लेकिन उनमें कहीं है कहीं रिसर्च साइंटिस्ट है जो बैंगलोर का एक बाबा को भगवान एक बाबा है नहीं बैंगलोर लाजन जैसे वो अभी मार जाने वाले उसका समय हो गया तो आप विचार कीजिए तो कैसे संभव है कि लोग जिनकी बुद्धि कम नहीं है मानते हैं कि वो बड़ जादू देखाने वाले भगवान तो कैसे संभव है ये माया माया का प्रभाव क्योंकि अध्यात्म ज्ञान नहीं है इसलिए क्या अध्यात्म क्या है और क्या नहीं है अध्यात्म और भौतिक में क्या अंतर है क्योंकि इस ज्ञान से योग नहीं है इसलिए वो सब लोग सभी धार्मिक प्रयत्न सब बेकार होते तो इसलिए वैष्णव आचार्य प्रयास करते हैं विशेषकर उनके शिष्यों को और जनसाधारण को इस आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन करें। तो श्री प्रभुपाद एक महान वैष्णव आचार्य थे और है श्री प्रभुपाद पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति की जाती है, लेकिन विशेषकर इसी विषय पर प्रचार किया। बा बा प्रभुपाद विश्व न जायते मिलते ना कदाचित नायम भूला भविता वाम भूय हर अजो नित्यम शाश्वत यम पुराण अन्य अन्य मानस की आत्मा का जन्म आत्मा का मृत्यु कभी भी नहीं होती, आत्मा सनातन है जो नित्य शाश्वत मंत्र। अन्य अन्य शब्द में श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन के द्वारा सर्वगुणों को बताते हैं कि आत्मा सनातन है, स्थायी है, शरीर का मृत्यु होते लेकिन आत्मा का मृत्यु कभी भी नहीं होती। तो कितना बार शुभ प्रभुपाद इसी विषय पर प्रचार कर एक बार जब पहले पहले इसको में जुड़े हुए लंदन में एक गुरु भाई उसको बताया कि एक बार लंदन में शुभ प्रभुपाद दो तीन महीने लंदन में रहे और यही सभी श्लोक भगवद गीता प्रवचन और एक रोज सारे श्लोक पर प्रवचन और इस सीरीज में तो बार बार अन्य अन्य प्रकार से श्री कृष्ण इस विषय स्पष्ट करते हैं कि शरीर अस्थायी है, आत्मा सनातन है। तो बार बार श्री कृष्ण करते हैं अविनाशी की तद्विधि एक सार्वभौमिक नाशतो विद्युत भावो न भावो विद्युत सदा। तो बार बार अलग अलग परिप्रेक्ष्य श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि शरीर अस्थायी है, आत्मा सनातन है। तो मेरे गुरु भाई मुझको बताया कि प्रभुपाद का एक शिष्य एक बार प्रभुपाद को बोले, बहुत साहस करना से बोले प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद आप बाबा हमको बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अभी हमें समझ गए हैं ये बात, तो इस बात पर और नहीं बोलना और दूसरे विषय पर प्रवचन किसी प्रभुपाद को प्रभुपाद बहुत जोर से बोले तू नहीं समझ रहे, इसलिए बार बार कहना पड़ेगा। और हमारे खुद का जीवन में प्रकट होते हैं कि हम बार बार सुनते हैं और हम हाँ हाँ बोलते नहीं निश्चर्य नहीं निश्चर्य नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा दाल खोलते हैं शरीर में फिर वो सब ज्ञान खलास हो, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और इंजेक्शन करना ये क्या है वो चिंता हो क्या मार जाऊंगा क्या मार जाऊंगा क्या होगा। तो इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं और वैष्णव आचार्य बार बार कहते हैं कि हम ईश्वरीय नहीं है, ईश्वरीय अस्थाई है, लेकिन आत्म सनातन है, भगवान सनातन है, हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। और ये सब संबंध जो है इस भौतिक स्थिति में वो सब अस्थाई है। हमारे माँ बाप है, भाइयों बहनों दोस्त पड़ोसी दुश्मन ऐसे सब है, लेकिन बाप तो माँ नहीं, माँ तो माँ नहीं, शरीर का माँ है, शरीर की माँ है, दुश्मन भी दुश्मन नहीं। यही सब एक्चुअली सब हमारे प्रिय है, सब हमारे भाई बहन है, क्योंकि परम पिता है कृष्ण। ऐसे वसुधैव कुटुंबकम्। अगर हम चित्र समझते हैं कि पिता हम से जगत माता दाद पिता हम कि श्री कृष्ण परम पिता है, सब प्राणी केवल मनुष्य जाति नहीं है, तो सब वृक्ष कीट कृमि पशु पक्षी वनस्पति अंगुर सब प्राणी के अंदर आत्मा है, सब परम पिता भगवान के संतान है। फिर इस दृष्टि होते हैं वसुधैव कुटुंबकम्। तो सब हमारे भाई बहन है, अगर इस दृष्टि नहीं होते फिर बंधु शत्रु भाव होते, तो ये व्यक्ति मेरा बंधु है क्योंकि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो मेरा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल होते, और वो व्यक्ति मेरा शत्रु है क्योंकि मेरा इंद्रिय सुख में विघ्न करता है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि इंद्रिय सुख मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरा कर्तव्य है चल मन धन सब प्रयास श्री कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए, बंधु शत्रु भेदभाव नहीं होते, फिर ऐसे समबुद्धि होती है। ब्रह्मवृत्त प्रसन्ना न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते राम। जो ब्रह्मबुद्धि है अर्थात आध्यात्मिक स्थिति में अधिष्ठित होते प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न चेत से हो या प्रसन्न होते हैं क्योंकि जानते हैं कि न शोचति न कांक्षति मेरा कुछ संबंध नहीं है इस भौतिक स्थिति के साथ, इस भौतिक संसार में सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं, महाकाल में सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं, और इस शरीर का भी सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं, जन्म होते हैं संघर्ष होते हैं और मृत्यु होते हैं। लेकिन ब्रह्मभूत व्यक्ति जानते हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं इस क्षणिक मायिक सांसारिक संघर्ष के साथ, मेरा सनातन संबंध है श्री कृष्ण के साथ। तो इसलिए कोई भौतिक वास्तु प्राप्त करने के लिए उत्साही नहीं होते, और अगर किसी भौतिक वास्तु जो वो ब्रह्मभूत व्यक्ति का हाथ में एक ही संपत्ति है, अगर टूट जाते हैं उसका चौड़े होते हैं, तो वो व्यक्ति शोक नहीं करते और ऐसे समस्या देशु भूतेशु वो देखते हैं कि सभी प्राणी श्री कृष्ण का अंश सेवक संतान है, और ऐसे श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त होती है। तो यदि हम वास्तव में समझते हैं यही बात, तो हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन होना चाहिए। अभी हम अहम ममेति देहात्म बुद्धि से मोहित होते हैं, और इस मोह का प्रभाव से हम सब कुछ देखते हैं जैसे कि यही ही सब कुछ है, मैं ईश्वर हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, ये मेरा व्यापार है, तो यही सब कुछ, और मेरा व्यापार का लाभ मेरा लाभ है, और मेरा परिवार का सुख मेरा सुख। परंतु यदि हम समझते हैं कि ये सब क्षणिक है, मैं इस शरीर धारण करने के पहले बहुत से शरीर धारण किया है, और इस शरीर चलने के बाद मैं अन्य शरीर में प्रवेश करूँगा, तो यदि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त होते हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान से क्या बोलते हैं इल्यूमिनेटेड प्रकाशित, तो हमारा पूरा परिपेक्ष अलग है। हम सभी स्थिति में स्थिर हो गए, हम निश्चित हो गए कि सब कुछ जो चलते हैं वो अस्थाई है, केवल भाव सागर के तरंग का प्रभाव है, लेकिन मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है इन सभी स्थितियों के साथ। क्या है समाचार, अंतर्वादियों का आक्रमण हो गया, और क्या खेला नहीं, क्या चलते हैं क्रिकेट टीम अभी खेलते हैं, अभी छुट्टी है क्या, तो ये सब समाचार है, समाचार पत्र में हम ये सब समाचार देते हैं, और अपना धर्म एक समाचार है जो ये हुआ ऐसा हो वैसा हो ऐसा हो गया। तो जो कुछ चलते हैं संसार में, तो जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हम पूरा उदासीन नहीं हो सकते। लेकिन समझना चाहिए सब कुछ अस्थाई है। मेरा संबंध है भगवान कृष्ण के और इसलिए जो भी होगा और इस भौतिक संसार में बहुत कुछ हो सकता है, हमें मालूम नहीं। आज या कल या 10 साल के बाद तो कितना खराबी हो सकती, खाली युग चलते रहते हैं और हमें मालूम नहीं कि भविष्य में कितना अंतराय हो। हम आशा करते हैं कि भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा और यूनाइटेड नेशंस, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का संगठन हो, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक लीग ऑफ नेशन, एक ऐसे संघ संगठित हुए जिसका उद्देश्य था शांति स्थापना करना। लेकिन वो आशा निष्फल था क्योंकि 21 साल के बाद दूसरा विश्व युद्ध का शुरू हुआ और दूसरा विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्रों संगठित हुए जिसका एक ही उद्देश्य था दुनिया में शांति स्थापित करना। लेकिन अशांति होते हैं, कितना युद्ध चलते हैं विश्व में और यूनाइटेड नेशंस का मुख्य काम है यूनाइटेड नेशंस पीस फोर्स बनाना और दूसरे देश को आक्रमण करना। तो शांति स्थापना के लिए अलग अलग देश को आक्रमण करना शांति का नाम। तो यही कलि युग है और भविष्य में क्या हम यही मतलब है कि शांति की आशा के लिए वो संयुक्त राष्ट्र संगठित हुए लेकिन शांति नहीं हो और शांति नहीं हो इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि जितने भी हम प्रयास करते हैं तो सुख शांति इत्यादि नहीं हो। और वास्तव में यही आशा कि इस भौतिक जगत में सुख शांति होगी वो एक नास्तिक के बाद की प्रकृति कि यही पर इस भौतिक जगत में सुख शांति होगी और हम सुख शांति में इंद्रिय सुख भोग करेंगे। और भगवान का कथा है वो ऊपर वाला है तो ऊपर रहो और हमको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो लेकिन हमको आशीर्वाद दे जिससे हम सुख शांति में विशाल इंद्रिय सुख भोग करें। तो यही आशा कि इस जगत में हम सुख शांति प्राप्त करेंगे ये संबंध ज्ञान का अभाव का कारण है। समझना चाहिए कि सुख शांति का स्थान है भगवान का नाम। तो हमारा पूरा प्रयास कि इस भौतिक शरीर और इस भौतिक स्थिति को भोग करना, ये पूरा प्रयास दूषित है। तो शुद्ध बुद्धि हो सकती यदि हम समझते हैं कि हम ईश्वरीय नहीं हैं, शरीर अस्थाई है, हम आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा। यदि हम स्वीकार करते हैं कि मैं ईश्वरीय नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो शुद्ध बुद्धि है, लेकिन पूरी शुद्ध नहीं है, अभिशुद्ध। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं क्या होते हैं, तो शुद्ध बुद्धि का फल होते हैं मुक्ति प्राप्त। लेकिन क्योंकि वो बुद्धि पूर्ण शुद्ध नहीं होती है, अभिशुद्ध विशेष रूप से शुद्ध नहीं होती, इसलिए विमुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्षणिक मुक्ति या अवास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। यही वृंदाक्ष विमुक्त मानस त्वयास्ति भावत अविशुद्ध दुर्गरणम् अरुद्रम कृच्छ्रेण परम पदम तथा तथंत्य दो अनामित विश्व दुर्गरण। जो व्यक्ति कृच्छत बहुत कष्ट लेकर तपस्या करते हैं मुक्त होने के लिए, तो शुद्ध बुद्धि अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन विशुद्ध बुद्धि का अभाव अर्थात मैं कृष्ण दास हूँ, मेरा कर्तव्य है पुंडरीकाक्ष भगवान कृष्ण के विचरण से वर्णन, इस विशुद्ध बुद्धि का अभाव से वो अर्धमुक्त या वास्तव में अमुक्त जीव का पतन होते हैं। तो इसलिए संबंध ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्णदास हूँ, तो ये ज्ञान अच्छी तरह सीखना चाहिए। कौन है भगवान, ये शब्द का क्या मतलब है, क्यों कृष्ण भगवान जैसे और शिव ब्रह्मा आदि देवताओं नहीं, तो ये सब अच्छी तरह सीखना चाहिए। आज दोपहर एक व्यक्ति आए और मुझसे पूछे कि कौन सा श्रेष्ठ, प्रभु की भक्ति या गुरु की भक्ति। मैं जवाब नहीं दे, क्योंकि वो नहीं जानते प्रभु शब्द का क्या मतलब है, भक्ति शब्द का क्या मतलब है और गुरु का क्या मतलब है। तो कौन से श्रेष्ठ, प्रभु भक्ति या गुरु भक्ति, वो नहीं जानते प्रभु कौन है, प्रभु शब्द का क्या मतलब है, भक्ति शब्द का क्या मतलब है, गुरु मतलब क्या है। तो ऐसे छोटे बच्चे जो 1+1=2 नहीं समझते, तो ऐसे बच्चे को E=mc² सिखाने का प्रयास क्या लाभ। तो भगवान भक्ति, तो भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं समझते आत्मा क्या है, भौतिक स्थिति क्या है, आध्यात्मिक स्थिति क्या है, भगवान कौन है, कैसे भगवान कौन है, तो केवल हमारा मत नहीं है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन समस्त वैदिक ज्ञान का सार अंश है। और सब महान महान ऋषि भी तो ये एक ही बात बोल कि कृष्णस्थ भगवान स्वयं, तो ये सब समझना चाहिए। नहीं तो कीर्तन तो कीर्तन नहीं हो, सेवा तो सेवा नहीं हो। उद्देश्य कीर्तन सेवा इत्यादि में उद्देश्य मुख्य है। अगर हम कीर्तन करते हैं और हमारा उद्देश्य है बहुत जोर से चिल्लाना, तो चिल्लाना से ही वो फायदा जो मिलते मुझे नाला में क्या फायदा मिलते चिल्लाने से। अगर मतलब ज़्यादा मिर्ची खाना है और ज़्यादा राजा गोल होते हैं, ज़्यादा चिल्लाना होते हैं, तो राजा गुण कमाना कुछ फायदा हो सकता है। राजा गुण तो थोड़ा कम जाए, लेकिन उससे सत्व गुण नहीं हो, तो राजा गुण कम होगा और फिर तामा गुण होगा। तो वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं होता, सेवा तो वास्तविक सेवा नहीं होती यदि हमारा उद्देश्य नहीं होते। संसिद्ध हरि तोषण, भगवान हरि का तोषण करने का उद्देश्य होना चाहिए। कीर्तन करो, सेवा करो, लेकिन साथ साथ श्रवण करना चाहिए। आज सुबह यशोमती नंदन प्रभु के साथ इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की कि इस सुबह का कार्यक्रम मॉर्निंग प्रोग्राम जो सब इस्कॉन में दे रही है, जो मंगल आरती तुलसी आरती सब होते हैं, लेकिन मुख्य अंग है श्रीमद् भागवत प्रवचन, जिसमें भगवत तत्व ज्ञान परिवेशित होते हैं। तो अगर हमारा अभ्यास नहीं होते हैं भगवत तत्व ज्ञान चर्चा करने श्रवण करने, तो कीर्तन करके भी फालतू हो। फालतू मतलब वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं हो, तो श्रवण करो। श्रवण कीर्तन दोनों एक साथ होना चाहिए, श्रवण कीर्तन और सेवा। श्रवण कीर्तन करो अनुखान असत पचाव छाड़ी, श्रवण कीर्तन सदैव करो और असत गपशप छोड़ो। श्रवण कीर्तन करो कृष्ण के बारे में, तो ये भगवत तत्व ज्ञान का मूल यही है, संबंध ज्ञान कि शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, और आत्मा का एक ही कर्तव्य है अविनाशी भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा करना। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? देखिए एक দর্শন আছে যে নিতাম্বিনী দেবী দাসী ইতনে শ্রদ্ধালু হয়ে তো হিন্দি কা এক শব্দ নেই সমস্ত লেকিন আতে হ্যাঁ দর্শক বিশ্বাস হয় কি শুনে সে ভক্তি বেড়ে প্রভুপাদ ভি আসে তো প্রভুপাদ জব ভারত মে হিন্দি মে প্রবচন দিয়ে ওর ইনকে সব আমেরিকান শিষ্য ভাগ গেলে প্রভুপাদ কহা ভাগ যাতে প্রভুপাদ আমি হিন্দি মে নেই সুনতে বৈঠো শুনো শুনে সে আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়ে কুছ প্রশ্ন ক্যা প্রশ্ন আপ জগত সহ মাইক সহ স্বরূপ জ্ঞান সম্বন্ধ জ্ঞান কা সর্বোচ্চ স্তর হে স্বরূপ জ্ঞান মেরা স্বরূপ ক্যা হ্যাঁ মে ক্যা গোপী হুম যা লোক হুম যা মায়ুর হুম যা ব্রজ কা বৃক্ষ হুম আপ ক্যা হ্যাঁ সামান্যত ভক্তি সম্মান সঙ্গে ও স্বরূপ নির্দিষ্ট লেকিন সম্ভব কি এক মুক্ত জীব কি ইচ্ছা হো সত্যি অন্য প্রকার সে শ্রীকৃষ্ণ কি সেবা করেন ওর অন্য ধারণ করতে আপ সমস্তে বুঝে দিন লেকিন আজ শাস্ত্র কাল আমার মুখ্য আচার্য রূপ গোস্বামী কাল তো প্রভুপাদ বহুবার বলে যখন ভক্ত প্রভুপাদ সে পুজতে আধ্যাত্মিক জাগরণ স্থিতিকে ধরেন প্রভুপাদ বলে কি এই জ্ঞান ভৌতিক বুদ্ধিকে অতীত তো যাও ওহা পর ক্যা হোগা দেখে ফির সমাজ হম আবি ক্যা বলতে মেন্ডক কুয়া মে ক্যা বলতে মেন্ডক মেডক আম কুয়া মে ক্যা বলতে মেডক ও হম বহু নিচে সে কুয়া কা উপর কুছে ক্যা হে হাতা নেই লেকিন কুছ হে উপর লেকিন ও উপর ক্যা হে ও মহত্বপূর্ণ নেই পুরো জীবন হে ইস কুয়ে কুয়ে মে তো ইহা পর তাজা তাজা কীট মিলতে খানা খেলিয়ে ও আমারা পুরো মেদক মেদক সমাজ হে ও মে ডক্টর ফ্রগ হুম ডক্টর অফ ফ্রগলজি তো আমি অজ্ঞান কা কুয়া মে হ্যাঁ তো শাস্ত্র মে জ্ঞান হে তো आध्यात्मिक जगत किस प्रकार है, लेकिन अनुभूति तो केवल बोलने से अनुभूति नहीं होती। तो ये उदाहरण दिया था आज कि थाईलैंड में श्यामदर सयाम, थाईलैंड में एक फल है दुरियन बोलते। कोई थाईलैंड गया है छुट्टी के लिए, काम के लिए, दुरियन उसका बहुत खराब बात बोल है, लेकिन थाई लोग और चाइनीज लोग उसको बहुत पसंद करते। और होटल में दुरियन का मौसम है वो साइन लगाते हैं दुरियन फल अंदर लाना मना है, क्योंकि उससे इतना सा बात दूर होती है तो उसका स्वाद है वो बहुत गर्म होते हैं और थोड़ा सा मीठा होते हैं। और एक बार लिया था बहुत अच्छा, बहुत खराब लगा। तो अभी आप सब समझते हैं दुरियन का स्वाद कैसे है। सब मालूम है दुरियन का स्वाद। जितने भी हम प्रयास करते हैं व्याख्या करना दुरियन का स्वाद क्या है, तो जब तक आप स्वयं नहीं करते तो तब तक समझ नहीं लगता। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत जाके आप समझ लेंगे स्वयं अनुभूति से। प्रभुपाद भी एक उदाहरण दिए कि एक व्यक्ति जो कभी भी कटहल, क्या बोलते हैं जैकफ्रूट हिंदी में, कटहल जैकफ्रूट फनस, फनस संस्कृत शब्द फनस, फनस बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में। तो फनस एक व्यक्ति था जो जैकफ्रूट फनस तो कभी भी नहीं खाए और दूसरे व्यक्ति से पूछो तो फनस का कैसे स्वाद है, और वो व्यक्ति तो सोचा बोला कि वो स्वाद है जैसे गन्ना का रस, एक मुसलमान गन्ना रस एक मुसलमान का दारे में से छान के गन्ना रस तो ऐसे स्वाद। तो आप जाइए गोलोक धाम और फिर अनुभूति हो, फिर आप समझ। प्रभुपाद बोले कि ओ कृष्ण सब गोप ग्वाल के बच्चे के साथ खेलते हैं और दोपहर वन भोजन होते पिकनिक होते, लेकिन कभी कभी इतना सा थक जाते हैं कि ऐसे आराम करके आधा सोते हैं और शक्ति नहीं है खाने के लिए। तो उस समय वो लाडू क्या बोलते हैं, तो लाडू स्वयं मुंह में आते हैं अभी समझते नहीं, तो हम सब कुआ में नहीं जाते। प्रभुपाद की कृपा से हम सब गोलोक धाम जाएंगे। हरे कृष्ण।